हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पूर्व गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुणा बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मावरुणीन्द्ररुद्रमरुद्रः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यम् ध्यानावस्थित तत् कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिकार भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 17। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सूत गोस्वामी भगवान के दो अवतारों का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि 12वां अवतार और 13वां अवतार उनके विषय में बता रहे हैं, तो कृपया श्लोक का उच्चारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धन्वंतरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। शब्दों का अर्थ, धन्वंतरं द्वादशमं, धन्वंतर यानी धन्वंतरी नामक अवतार, द्वादशमं दशम कहते हैं दस को, दो मतलब टू प्लस टेन इज इक्वल टू 12, तो द्वादशमं कहते हैं 12वां, जैसे द्वादशी होती है ना, 12, एकादशी मतलब 11वां और द्वादशम मतलब 12, और उसके बाद ये 12वां अवतार कौन सा, धन्वंतरम, और उसके बाद 13वां त्रयोदशमं, त्रयोदशमं मतलब 3 प्लस 10, 13वां एव च निश्चय ही च मन तथा, 13वां अवतार कौन सा, अपाययत् सुरानन्या, अपायत मतलब पीने के लिए दिया। अब क्योंकि धन्वंतरी कलश लेकर आए थे अमृत का, तो अब डेफिनेटली क्या होगा, पिलाया जाएगा, तो पीने के लिए दिए किसको, सुरान अन्यान यानी कि देवताओं को, अन्यान मतलब अन्यों को, मोहिन्या सुंदरी द्वारा, मोहयन मोहते हुए, देवताओं को अमृत और अन्यों को मोहते हुए, यानी कि अन्यों को सिर्फ भ्रांति प्राप्त हुई, सिर्फ विमोहत मोह उसको मिला, यानी असुरों को, स्त्रिया यानी स्त्री के रूप में। अनुवाद, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। जगत गुरु श्री भक्तिपाद की, परम गुरु प्रभुपाद की जय हो। गौर परमानंद। आज भगवान श्री कृष्ण के 12वें अवतार में, जैसे हम समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ की थी लास्ट श्लोक में, इसमें क्या हुआ था कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन स्टार्ट हुआ था और भगवान ने उसमें कौन कौन से अवतार लिए थे। सबसे पहला अवतार मतलब पहले तो भगवान ने देवताओं को यह आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों की सहायता करूंगा, और पग पग पर भगवान ने सहायता की। जैसे मंदरा जल उठाने के समय और टिक नहीं रहा था तो उसके लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, और उसके बाद भी भगवान ने अजित अवतार से उसकी है ना रक्षा की थी, और इसके बाद समुद्र मंथन से विश्व उत्पन्न हुआ, और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। टोटल 14 रत्न के विषय में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या, लेकिन 14 रत्न प्राप्त होने के बाद आज जो आज ना सुत्त गोस्वामी बता रहे हैं भगवान के 12वें अवतार, वो 12वां अवतार क्या हुआ था, वो है 13वां रत्न। 13वां रत्न का मतलब है वो धन्वंतरी भगवान का अवतार है और वो अमृत कलश लेकर आए। और जब धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर आए तो देवताओं और असुरों को ये लगा कि अब जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए हमने इतना संघर्ष किया वो प्राप्त हो गया। बहुत ही प्रसन्न हुए कि अब ये अमृत का पान करेंगे हम और हम सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन असुरों की एक वृत्ति है कि वो कभी भी न्याय के साथ नहीं रहते हैं, न्याय के साथ एक दूसरे, जैसे उन्होंने मेहनत तो उन्होंने एक जैसे की, लेकिन असुरों ने क्या किया, धन्वंतरी से अमृत का कलश लेकर भाग गए। अब तो वो भाग गए और देवता लोग देखते ही रह गए, क्योंकि देव जो असुर थे वो बहुत ज्यादा राक्षस थे, और इस समय तो पहले से ही भगवान ने बता दिया था कि समय ऐसा चल रहा है कि देवता जीतेंगे नहीं, तो लड़ाई कर नहीं सक रहे थे, और दूसरा उनके पास अमृत था, वो तो पियेंगे तो वो सब मरेंगे ही नहीं, देवताओं को मार डालेंगे। तो फिर अब बहुत परेशान हो गए देवता कि इतनी मेहनत की और फिर अमृत तो उनको ही मिला, तो चले गए भगवान के पास। आज फिर भगवान के सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं और कह रहे, आपने तो हमें ये कहा था कि आप हमारी सहायता करोगे, लेकिन देखो इतनी मेहनत की हमने और वो असुर अमृत कलश लेकर भाग गए, अब वो सारा अमृत पी जाएंगे, हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो फिर है ना भगवान हंस रहे थे, तो बोला आपको इस स्थिति में भी हंसी आ रही है, आप है ना हमारी इस समस्या का समाधान करो। तो भगवान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं समाधान करूंगा। तो बोले कब करोगे, वो पी लेंगे तब करोगे क्या, जल्दी करो कुछ ना कुछ। तो भगवान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो असुर है। असुर का क्या मतलब है जानते हो, जो कभी एक दूसरे के सुर से सुर ना मिलाए। असुर का मतलब है जो कभी दूसरों को सुखी ना कर सके और ना देख सके। तो अगर कोई असुर पीना चाहेगा भी तो दूसरा ये नहीं सोचेगा चलो ठीक है वो पी ले फिर मैं पीऊं, हर की क्या इच्छा होगी कि मैं पहले पीऊं। एक बारी गए सब सारे, मतलब ये पहले की बात है, सारे असुर गए और ब्रह्मा जी को कहा कि देखो हम एक ही पिता की संतान है। अब जानते हो सुर और असुर यानी देवता और दानव के पिता एक ही है कच्छप, और उनकी 2 पत्नियां हैं दिति और अदिति, उनमें से अनादिति के देवता और अदिति के सारे असुर। तो इस तरह से अना एक ही पिता की संतान होते हुए भी हमेशा असुर जो है उनकी कभी भी भगवान सहायता नहीं करते, है ना। जो सुर है, जो देवता है, उनकी सदैव सहायता करते। तो एक बार सारे असुरों ने सोचा कि भगवान विष्णु इतना पक्षपात करते, हमसे इतनी घृणा करते हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा, आप कहते हो भगवान जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन ये विष्णु सदैव हमारे साथ ऐसा करते हैं। हम जब भी हमारी बात आती है तो हम हमारी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन देवताओं की सदैव सहायता करते हैं। इसीलिए हमें है ना भगवान विष्णु से हमें ना घृणा होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का आचरण सही नहीं है ना, आप लोग का जो बर्ताव है वो सही नहीं है, आप लोग दूसरों को सुखी नहीं देख सकते हो, इसलिए भगवान आपकी सहायता नहीं करते हैं। तो बोला, ऐसा थोड़े है, हम तो बिल्कुल सब इसी तरह से तो रहते हैं जिस तरह से देवता रहते हैं। आप ना खामखा में हम पर आरोप डाल रहे हो कि हम आपस में झगड़ते रहते हैं, हमारा आचरण सही नहीं है। तो बोला ठीक है, क्योंकि वो मानने के लिए तो तैयार ही नहीं थे, ब्रह्मा जी के पास बहस करने के लिए समय और नहीं था। तो बोला ठीक है ना, आप अगर सही रहते हो तो चलो ठीक है, कल हम हमारे घर पे ना भोजन रखते हैं, दावत रखते हैं आप सबकी, आप लोग आइए और उसके बाद हम है ना देवताओं को भी प्रसाद खिलाएंगे, लेकिन पहले आप लोग आइएगा। सब खुश हुए कि ब्रह्मा जी के घर में हमारी दावत है। सब गए और ना ब्रह्मा जी ने बहुत बहुत प्रसाद बनाए थे, इतने सारे आइटम्स, हलवा, पूरी, दही बड़े और मिठाइयाँ, बहुत बहुत टाइप की मिठाइयाँ थी, फ्रूट्स थे, जूसेस थे और डिजर्ट्स, इतनी सारी चीजें थी और है ना बहुत कुछ था, सब्जियां थी, अनेक प्रकार की 56 भोज बनाए, बहुत सारे भोजन बनाए और सारे असुरों को बिठाया। बोला अब आप है ना भोजन प्रारंभ कीजिए, लेकिन प्रारंभ करने से पहले एक शर्त रखिए, जो असुर थे उनके लेफ्ट हैंड को बांध दिया, जो लेफ्ट हैंड था ना बायां हाथ उसको बांध दिया। तो बोला सीधे हाथ से खाना है, और सीधे हाथ से भी कैसे खाना है, उस हाथ को सीधा पकड़ के ऐसे उस पर लकड़ी बांध दी रस्सी से, यानी कि वो हाथ अब टर्न नहीं हो सकता, ये जो जॉइंट है ना हमारा एल्बो, उस पर सीधा करके उसको लकड़ी बांध दी, अब वो टर्न नहीं हो सकता। टर्न नहीं हो सकता मतलब माउथ में कैसे जाएगा। तो फिर है ना इस तरह से उन्होंने बांध दिया, बोला अब प्रारंभ करो। तो सारे असुरों ने सोचा अब ये से कैसे खाएं, तो उन्होंने बताया क्या तरीका किया, वो उठाते ऐसे मतलब कोई भी जैसे लड्डू उठाना, उठा के ऊपर उछाला, फिर मुंह खोला, आ उसके अंदर गया। तो किसी का किधर जा रहा था, किसी के आंख में लग रहा था, किसी का मुंह में लग रहा था, किसी के बाल में लग, एक दूसरे की लकड़ी से दूसरों को मार रहे थे और बोल रहे थे ये मेरे बजिया मैंने ऊपर फेंकी तुम्हारे मुंह में चली गई, तुमने मैं क्या करूं मैं मुंह में चली गई, तो दूसरा वापस उसको ना और कुछ और मारता। इस तरह से पूरा जो इतना अच्छा प्रसाद बनाया था सारा बिगाड़ दिया। फिर असुरों की ट्रन में तो सारा इस तरह करके किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी का तृप्ति नहीं हुआ और सारा प्रसाद भी बिगड़ गया। बोला अब आप लोगों का टाइम ओवर, अब आप लोग उठो, सारा सत्यानाश कर दिया सारा प्रसाद, अब भी है ना देवताओं की ट्रन में, देवताओं के साथ भी ऐसा किया, लेफ्ट हैंड बांध दिया और राइट हैंड पर ना लकड़ी बांध दी रस्सी से, और बोला कि अब आप प्रारंभ कीजिए। तो देवताओं ने ऐसे लाइन बनाई, जैसे हम लोग कैसे जो सभ्य लोग होते हैं ना जो हमेशा मंदिर में आते हैं वो भी लाइन से प्रसाद खाते हैं, जो असभ्य लोग होंगे ना वो ऐसे पागलों की तरह बैठेंगे, लेकिन सही डिवोटीज हमेशा लाइन बना के बैठते। तो ऐसे लाइन बनाई और उनके अपोजिट में दूसरी लाइन, दो मतलब लाइनें बना गई, एक इस तरफ फेस किया था, एक इस तरफ फेस किया था। तो दोनों को दूसरे वाले दल को बोला थोड़ा आगे आ जाओ, तो थोड़ा आगे आ गए। फिर देवताओं ने एक युक्ति सोची, अपने सामने वाले को बोला तुम मुझे खिलाओ मैं तुम्हें खिलाता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या किया, वो जो सामने वाले को जो जो खाना था वो उसको बता रहा कि देखो तुम मुझे ये सब्जी है ना पूरी के साथ खिलाओ, ये है ना रायते के साथ बिरयानी खिलाओ, और फिर ये राइस के साथ ये आलू की सब्जी खिलाओ ऐसे, और ये मिठाई, अरे हाँ वो वाली मिठाई खिलाओ, थोड़ा जूस पिला दो, अब मुझे तीखा लगा है, अभी ये खिलाओ मीठा वाला खिलाओ, ये कर। तो उसको जो खाना था वो खिला रहा था, और उसको जो खाना था वो खिला रहा था। इस तरह सब देवता तृप्त होकर उठ गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये होता है देवताओं और दानवों में फर्क कि जो देवता होते हैं वो कभी भी आपस में लड़ते नहीं है, हर सॉल्यूशन जो है वो आपस में ऐसे अच्छे तरीके से हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को हमेशा हर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, किसी को आगे बढ़ने की। ऐसे होते बिच्छू, बिच्छू होते ना वो क्या करते हैं, आप उनको, हम लोग ऐसे एक बार गए थे ना जगन्नाथपुरी में, तो एक छोटा सा बकेट होता था उसमें बिच्छू डाल के आते थे, लेकिन एक भी बिच्छू बकेट से बाहर नहीं आता था, सब बाहर निकलने की चेष्टा करते थे लेकिन बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकल सकते थे, क्योंकि एक ऊपर आता था तो दूसरा वाला बिच्छू जो है ना वो उसकी टांग पकड़ के नीचे गिरा देता था, मतलब थोड़ा ऊपर आता था तो दूसरा उसको ऊपर आता हुआ नहीं गिराता था, देख सकता था, फिर गिरा देता था, फिर गिरा देता था, तो कोई भी बकेट से बाहर नहीं आ सकता था। तो ये असुरों की प्रवृत्ति है कि वो कभी भी दूसरों को आगे निकलता नहीं। लेकिन भक्त क्या करते हैं, असुर एक दूसरे की टांग खींचकर उसे गिरा देते हैं, जबकि भक्त दूसरों के पैर में अपना सर रखकर, और जब जिसके चरणों में सर रखा है तो वो उसको इतना आशीर्वाद देगा कि वो उससे भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये है देवताओं और असुर। तो बताया देवताओं ने जाकर भगवान को कि हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई है, तो आप जल्दी करो। तो भगवान ने कहा फिक्र मत करो, वो असुर है, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक दूसरे को अमृत पान करने के लिए आना छोड़े, वो कभी ऐसा करेंगे नहीं, पिएंगे नहीं। तो उसे बेफिक्र रहो, मैं आ रहा हूँ अभी एक दूसरा अवतार लेकर। अब त्रयोदशमी वच, अभी 13वां अवतार भगवान का हो रहा है, और वो कैसी है, मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, कि वो मोहिनी है और वो सबको मोह लेने वाली है। उनके स्वरूप का सौंदर्य का बखान करते हुए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं भगवान के उस अद्भुत स्वरूप को, उस अद्भुत सौंदर्य का बखान कर सकूं। अब देखिए भक्तों, मैं मोहिनी को भगवान कहकर नहीं पुकारूंगी, केवल अब आपको समझना है कि ये भगवान है। लेकिन अब क्योंकि उन भगवान के उसी स्वरूप की सौंदर्य का बखान होगा तो उसी हिसाब से होगा। तो अभी मैं बार बार बताऊंगी नहीं कि ये भगवान विष्णु है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान विष्णु है, या कृष्ण का स्वरूप है, ये सब नहीं बताऊंगी। केवल मोहिनी के स्वरूप का, उनके सौंदर्य का बखान होगा। और डूबो, मतलब ऐसा कहते हैं आचार्यगण कि हम पिला रहे हैं तुम पियो, बस ऐसे उसके सौंदर्य का बखान हो रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। और हमें उसको श्रवण करना है कि आज भगवान कितना अद्भुत स्वरूप धारण करके अपने भक्तों की समस्या का समाधान लेकर आए हैं, क्योंकि इतने सारे असुर थे और उनके पास अमृत था, यदि अमृत का पान कर लिया तो असुर अमर हो जाएंगे। लेकिन भगवान कभी नहीं चाहते कि जो असुर है वो अमर हो, उनका नाश करना भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए भगवान कभी भी उनको अमृत का पान करने नहीं देंगे। तो अना भगवान इतना सुंदर और मनमोहक रूप धारण करके उस जगह पर प्रकट हुए जहाँ पर सारे असुरगण अमृत के लिए लड़ाई कर रहे थे। वो कह रहा था पहले मैं पियूंगा, दूसरा कह रहा था पहले मैं पियूंगा, उसने कहा तुम्हारा कैसे तुम पियोगे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पहले मैं पियूंगा, खबरदार, जो खोलने की कोशिश की। इस तरह से एक दूसरे को डांट रहे थे, झपट रहे थे, तो अचानक उनको थोड़ी सी धीमी सी आवाज सुनाई दी, चन चन चन। जब इतनी मधुर आवाज उनके कानों में पड़ी तो वो सब उसी ओर ध्यान उनका गया कि आवाज आ रही कहां से है। उन्होंने देखा एक परम सुंदरी, अत्यंत ही सुंदर स्त्री उनकी ओर आ रही है। रात्रि का समय और चंद्रमा की रोशनी में उस अत्यंत ही सुंदर स्त्री का जब उन्होंने देखा तो सारे जो असुर थे वो अमृत को भूल गए और केवल उसी स्त्री की ओर देखकर उसके विषय में बातें करने लगे। एक ने कहा की अपार सुंदर स्त्री आई कहाँ से? ये तो ऐसा सौंदर्य तो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। तो दूसरे ने कहा, हाँ ऐसा सौंदर्य तो संसार में मैंने भी कभी नहीं देखा। मैंने हर लोक में गया हूँ, लेकिन किसी भी लोक में, चाहे वो नाग लोक हो, किन्नर लोक हो, देव लोक हो या मनुष्य लोक हो, कहीं पर भी ऐसा विचित्र सौंदर्य दिखा नहीं मुझे। तो फिर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये आखिर आई कहाँ से है। जब उसकी ओर देखा तो उसके विषय में बताते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि वैसे तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊं कि वो अपार सुंदर सौंदर्य कैसा था, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो बताया कि उसका रंग साधारण नहीं था। सबसे पहले उसका जो रंग था वो ना सफेद था, ना मतलब व्हाइट कलर की नहीं थी और ना ही ब्लैक कलर की थी। उसका रंग चमकते हुए एकदम घोर, जैसे ब्लू जैसा होता है ना, जैसे कृष्ण का कैसे कलर होता है स्काई टाइप का, इस तरह से कलर। और इतना सुंदर मनोहर, मतलब ऐसी झांकी शब्दों में बताई नहीं जा सकती। उसके नेत्र कमल को भी लज्जित कर रहे थे। उसने अत्यंत ही सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे, हाथों में चूड़ियां, बाजूबंद, गले में अत्यंत ही सुंदर मालाएं और चरणों में बहुत ही सुंदर झनकार वाली पायल पहनी थी और कमर पर बहुत ही सुंदर कमरबंद लगा हुआ था, माथा पट्टी, और उसके बाद बहुत ही सुंदर फूलों का उन्होंने श्रृंगार किया हुआ था। सुखदेव गोस्वामी एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से मोहिनी ने श्रृंगार किया था और उन्होंने जो फूलों का श्रृंगार किया था और उनके शरीर से इतनी अद्भुत सुगंध आ रही थी कि जितने भी जो भौरे थे ना वो इधर मंडरा रहे थे कि इतनी सुंदर सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध आ रही कहाँ से है। वो इसके पीछे पीछे आ रहे थे और जब भौरों को देख रही थी तो उसकी आंखों से ऐसे भय जैसा दिख रहा था कि ना वो ऐसे हिल रही थी और इतनी सुंदर दिख रही थी। उसके जो बाल थे उसके विषय में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि वो इतनी कोमल थी कि उनकी बड़ी सी एक चोटी थी, मतलब बाल गुंधे हुए थे, उस पर फूल लगे हुए थे, लेकिन वो इतनी सुकोमल थी ऐसा लग रहा था कि वो अपने बालों का बोझ नहीं उठा पा रही है। तो अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने मोहिनी के सौंदर्य का। और फिर सारे असुर उसकी ओर आए और बोला, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी पुत्री हो? तुम इस रात्रि के समय यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? बोलो बोलो कामिनी, हम तुम्हारे आवाज को सुनना चाहते हैं, हम तुम्हारे शब्दों को श्रवण करना चाहते हैं। इतनी सुंदर स्त्री और ना यहाँ पर अकेली तुम आई कैसे? और अब तुम आ ही गई हो तो तुमसे बात के बगैर रह नहीं सकते, तुम कृपया कुछ बोलो। बहुत उनको बोला, बहुत बहुत बोला, लेकिन मोहिनी कुछ न बोली। लेकिन वो स्वयं अपने नेत्रों से बात कर रही थी, यानी कि नेत्रों से इधर उधर झांक रही थी कि मुझे खुद नहीं खबर मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। तो एक असुर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ही जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो। तुम्हें यहाँ पर विधाता ने भेजा है मेरे लिए, क्योंकि विधाता हमारा सहयोग हमें मिलाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर भेज दिया है। तो एक दूसरे ने सुना, जोर से उसको धक्का दिया, बोला, जाओ इधर से, ये मेरा माल, मतलब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने ये मेरे लिए आई है। वो बोला, नहीं मेरे लिए आई है, वो बोला, नहीं मेरे लिए आई है। तो फिर सारे असुरों ने बोला चुप करो, फिर इससे पूछते हैं कि ये क्या चाहती है। तो असुरगण गए मोहिनी के पास और अपना परिचय देने लगे कि हे कामिनी, हम ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। इनकी जब परिचय देने का आया तो ऋषि कश्यप के पुत्र हो गए और बोला कि हम सब भाई हैं, हम देवताओं के भी भाई हैं और हम यहाँ पर आए थे, समुद्र मंथन किया और ये अमृत प्राप्त किया है और इस अमृत को प्राप्त करने के बाद अब हमें ये समझ में, हमने अभी इसको पिया नहीं है, इसलिए हमारे एक समस्या हो गई है कि हम कैसे इसको आपस में विभाजित करें। तो लेकिन आप इतनी सुंदर हो, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा अमृत का जो समुद्र मंथन था ना, वो सारा बेकार गया। उसमें समुद्र मंथन के उपरांत हमें 14 रत्न प्राप्त हुए, लेकिन वो सारे के सारे 14 रत्न आपके मतलब आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो वो मोहिनी उनको देख रही थी खाली, बोला क्या क्या आया अमृत है ना प्राप्त होने से, और मुझमें ऐसा क्या है जो उससे बढ़कर है। तो बोला सबसे पहले निकला विष, लेकिन तुम्हारी कटाक्ष उस विष से कहीं अधिक गुना बढ़कर है। उसके बाद कामधेनु गाय, लेकिन तुम्हारी वाणी उस कामधेनु गाय से अत्यधिक मनोहर है। उसके बाद उच्चैःशर्वा, तीसरे नंबर पर उच्चैःशर्वा घोड़ा, लेकिन तुम्हारे स्तन उससे भी अधिक सुंदर है। उसके बाद एरावत हाथी, नंबर 4, एरावत हाथी जो गज था, लेकिन तुम्हारी चाल उस गज से भी अधिक सुंदर है गजकामिनी। 5 नंबर कौस्तुभ मणि, लेकिन तुम्हारे दांत उस मणि से भी अत्यधिक सुंदर है। 6 पारिजात वृक्ष, लेकिन उस वृक्ष की जो फूल है उन पुष्पों की सुगंध से तुम्हारे शरीर की सुगंध बहुत अधिक है। 7 रंभा अप्सरा, लेकिन तुम्हारी जंघा उससे अत्यधिक सुंदर है। 8 लक्ष्मी, परंतु तुम्हारा तेज उससे कई गुना कई बहुत बहुत बढ़कर है। और 9 वारुणी मधुरा, लेकिन तुम्हारे दर्शन से जो नशा आया है वो उस मदुरा में नहीं, मदिरा। और 10 चंद्रमा, परंतु तुम्हारे मुख की कांति उस चंद्रमा को फीका कर रही है। 11 शंख, लेकिन तुम्हारा हास्य, तुम्हारी मुस्कान उस शंख से अत्यधिक सुंदर है। 12 धनुष, लेकिन तुम्हारी जो ब्रिकुटी है यानी जो आईब्रोस, वो उस धनुष से अत्यधिक सुंदर है। 13 नंबर पर धन्वंतरी पधारे थे जो अमृत कलश लेकर आए थे, परंतु तुम्हारा हृदय उस धन्वंतरी से अत्यधिक विशाल है। और वो 14 रत्न लेकर आए थे जो है अमृत, परंतु तुम्हारे अधर, तुम्हारे होंठ उनके समान, उनके अमृतत्व के समान, यानी उस अमृत के सामने तुम्हारे होंठों का जो अमृत है, उस अमृत के सामने ये अमृत हमें बिल्कुल तुच्छ लग रहा है। इस अमृत अभी हमें उसमें कुछ आसक्ति नहीं आ रही है, तो हमने इतनी इतनी मेहनत की ये 14 रत्न प्राप्त करने के लिए, परंतु वो सब तुम्हारे सामने एकदम तुच्छ लग रहे हैं। तो मोहिनी और भी ज्यादा घबरा गई और कहने लगी, अरे मैं कहाँ आ गई हूँ, यहाँ पर सब लोग मुझे कितना घूर घूर के देख रहे हैं। तो असुरों ने कहा, तुम चिंता मत करो कामिनी, तुम्हें भगवान ने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें बीएसी दिया है तो ये लो अमृत, तुम हम सबको बराबर बराबर बांट लो। तो मोहिनी ने कहा कि अभी तुमने बताया कि हम ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, तो इतने महान पिता के आप पुत्र हो, तो आप किसी स्वेच्छाचारी स्त्री के ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हो? ये अमृत तुमने बड़ी कठिन परिश्रम से प्राप्त किया है, और पंडित और ज्ञानी का मत है कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि स्त्री का संग आपके पतन का कारण बन सकता है, तो आप कैसे मुझ पर विश्वास कर सकते हो? मैं तो एक उड़ने वाली तितली हूँ, कभी उस फूल पर तो कभी दूसरे पुष्प पर मंडराती हूँ। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमको तुम सबको बराबर बराबर आना ये अमृत पिलाऊंगी, और मुझ पर विश्वास कैसे कर सकते हो? और वैसे भी शास्त्र में कहा गया है, गरी तकम समानारी पुमान तप्त अंगार समान, पुरुष जमे हुए घी के समान है और नारी तप्त अंगार समान है। जब घी अंगार के सामने आता है तो निश्चित ही पिघलेगा। कितना भी ज्ञानी ध्यानी कितना ही प्रबल क्यों न हो, काम का वेग इतना प्रबल है कि जीव की बुद्धि को हरण कर लेता है। यह शास्त्र का मत है कि पुरुषों को स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि वेदव्यास जी जब शास्त्र लिख रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि वेदव्यास जी बोल रहे थे, गणपति उसको लिख रहे थे और जैमिनी एडिटिंग कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वो बता रहे थे कि ये लिखना चाहिए ये नहीं लिखना चाहिए, कुछ काट रहे थे, कुछ इस तरह से आपस में बात करके बता रहे थे। तो वेद व्यास जी ने एक जुमला बताया कि किसी भी पुरुष को अपनी माँ या बहन के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। गृहस्थ और ब्रह्मचर्य को तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन यदि वो साधु हो सन्यासी हो तो भी कभी एकांत में किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। जैमिनी ऋषि ने वेद व्यास जी को कहा कि प्रभु आप ये कैसे कह सकते हो, हम जो सन्यासी होते हैं साधु होते हैं वो तो विरक्त होते हैं, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं, हमारे अंदर कोई काम वासना नहीं, तो फिर हम तो तपस्वी हैं, तपस्वी के जैसा जीवन गुजारते हैं, तो हमें आप ऐसी आज्ञा क्यों कह रहे हो? तो फिर क्योंकि जैमिनी ऋषि अड़ गए थे, तो वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है, अब हम लिखना यहाँ पर बंद करते हैं, आज विश्राम करेंगे और कल इस बात का समाधान खोजने के बाद फिर वापस से हम लिखेंगे। तो सब जैमिनी ऋषि अपने घर पे गए और वेदव्यास जी अपने घर पे गए, गणपति चले गए कैलाश। और फिर वहां पर ऐसा हुआ कि रात हो गई, जब अंधेरी रात हुई तो तूफान आना शुरू हो गया, इतना तेज तूफान आया और उस तूफान में वर्षा स्टार्ट हो गई। अंधेरी रात वर्षा हो रही है, जैमिनी ऋषि अपने कमरे में बैठे हुए थे, अचानक दरवाजे की ठक ठक की आवाज आई, दरवाजा खोलो कृपया दरवाजा खोलो। तो फिर ये आवाज सुनकर जैमिनी ऋषि बहुत परेशान हुए कि आवाज आ रही कहाँ से है। उसने जब दरवाजा खोला तो एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री जो बारिश में से भीगी हुई थी, तो वो खड़ी थी और क्योंकि भीगी हुई थी तो उसका शरीर एक ट्रांसपेरेंट हो गया था, उसका वस्त्र तो दिख रहा था। तो उसने बोला कि आप कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, बहुत तेज बारिश है और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कैसे यहाँ से जा सकती हूँ, बारिश थमेगी तो मैं निकल जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मैं आपको अपने घर में आने नहीं दे सकता। तो उसने कहा, आप संत हो, आप सन्यासी हो, तो कृपा करो ना। सन्यासियों और वैष्णवों के तो ये गुण होते हैं कि वो अबलाओं पर कृपा करते हैं, मुझ पर कृपा करो, मुझे घर में सहारा दे दो। तो उसने कहा, तुम बहुत आग्रह कर रही हो तो चलो ठीक है। उसने दरवाजा खोला और बोला, देखो तुम इस कमरे में सोना और इसको अंदर से बंद कर देना, चाहे कोई भी आ जाए, भले मैं भी आ जाऊं तो भी तुम दरवाजा मत खोलना, भले कुछ भी हो जाए आपको रात को दरवाजा नहीं खोलना है। तो जैमिनी ऋषि स्वयं बाहर बरामदे में सो गए और उसको अंदर सुला दिया, लेकिन सो रहे नहीं थे, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। कभी वो करवट, कभी वो करवट, कभी वो करवट, बार बार वो दृश्य आ रहा था उसके सामने कि भीगी हुई स्त्री आई थी, और बार बार उसके माइंड में यही आ रहा था कि मुझे उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन है ना वो बार बार उसको भूलने की चेष्टा भी कर रहे थे फिर भी नहीं भूल पा रहे थे। फिर अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर सके और जोर जोर से ठक ठक करने लगे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो उस स्त्री ने झरोके से कहा कि परंतु आपने तो कहा था कि मुझे दरवाजा नहीं खोलना है। तो बोला, नहीं तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तो उसने कहा, लेकिन क्या बात करनी है, आप यहाँ से भी बात कर सकते हो। बोला, नहीं मुझे तुमसे बात करनी है, तुम दरवाजा खोलो जरूरी अभी। तो फिर वो विवश हो गई क्योंकि उसका ही घर था, क्या करती। दरवाजा खोला और जैमिनी ऋषि ने कहा, देखो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, कोई ना तुम्हारी कोई शर्त है तो बताओ, मैं अभी का अभी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उस स्त्री ने कहा, हाँ मेरी एक शर्त है, यदि आप उसको पूरा कर दोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तो फिर उसने बोला, चलो ठीक है, जो भी शर्त है अभी की अभी बताओ, मैं अभी ही विवाह करना चाहता हूँ तुमसे। तो उस स्त्री ने कहा कि विवाह करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम घोड़ा बनो और मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और ये जो तुम्हारा घर है उसके साथ चक्कर लगाओ। जैमिनी ऋषि ने सोचा कि वैसे भी रात है, कौन देखेगा, ऐसा कर ही लेता हूँ, अभी विवाह के बगैर तो रहा नहीं जा रहा था उससे। तो वो घोड़ा बन गए और वो स्त्री उसके ऊपर बैठ गई और वो साथ चक्कर लगा रही थी, लगा रही थी, लगा रही थी। तो ऐसा करने के बाद जब सातवां चक्कर पूरा हुआ और वो स्त्री उठी वहां से, और जब उसको गौर से देखा जैमिनी ऋषि ने, तो वो स्त्री कोई और नहीं थी, वेदव्यास जी थे। और वेदव्यास जी ने कहा कि तुमने कहा था ना कि संतों को या सन्यासियों को कभी कोई काम अट्रैक्ट नहीं करता है, अब बताओ, तुमने लिखने नहीं दिया था ना, हम लिख रहे थे कि हमने लिखा था ना कि स्त्रियों को कभी भी पुरुष के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए, अब बताओ लिखना चाहिए या ऐसा लिखो शास्त्र में या नहीं लिखो। तो जैमिनी ने कहा, वेदव्यास जी को, कि सुबह मत लिखना, अभी से गणपति को फोन करो, अभी से आए, अभी से लिख ले कि एक भी बंदा फंसे नहीं और स्त्रियों के साथ कभी भी एक अकेले में ना बैठे, ये कार्य फौरन से भी पहले करना चाहिए, अभी रात को ही बुलाओ गणपति को। तो मोहिनी ने कहा समस्त असुरों को कि बुद्धिमान व्यक्ति नारियों पर और स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते, और मैं तो कामिनी हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसलिए तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब असुरों ने मोहिनी के मुख से ये सब सुना, तब तो असुर और भी उस पर विश्वास करने लगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कह रही थी कि मैं, मुझ पर विश्वास मत करो, मैं कामिनी हूँ, मैं ना भरोसे के योग्य नहीं हूँ। तो असुरों ने कहा, अपनी बुराई कोई नहीं करता, जो अपनी बुराई करता है वो हृदय से शुद्ध होता है। तो हम फिर भी, उन्होंने कहा कि भले आप कैसे भी हो, हम आप पर भरोसा करते हैं, आप हमें ये अमृत आप ले लीजिए बस। और जैसे ही अमृत उसके हाथ में आया मोहिनी के, वो बोली कि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आज तक कभी भी भरोसा नहीं है, मुझे आता नहीं है, तो मुझे बहुत भय लग रहा है क्योंकि आप सब असुर हो, और अगर किसी को कम किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को मिले भी नहीं क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो फिर मेरे तो प्राण ही हर लोगे तुम लोग। ना बाबा ना, ये इतना बड़ा भार मुझसे नहीं सहन होता, मेरे कंधे बड़े नाजुक हैं, इतना बड़ा भार, इतने बड़े कलश का भार मैं नहीं उठा सकती हूँ, और तुम लोगों से तो मुझे बहुत डर भी लग रहा है। तो असुर ने कहा, नहीं नहीं, हम आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, आपको जैसा भी आता है ना, जैसा भी बांटना आता है आप बांटो, अगर हम में से किसी को अमृत नहीं भी मिला ना तो भी हम आपसे कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, आपसे शिकायत नहीं करेंगे, जिसको जितना दिल करता है उतना पिला, हमारे आपके दर्शन के सामने ये अमृत तो तुच्छ है, हमारे लिए तो तुम्हारा दर्शन ही अमृत से कई गुना ज्यादा बढ़कर है। तो वास्तव में देवताओं ने, ये असुरों ने कितनी प्यारी बात कही ना, कि भगवान के दर्शन के सामने ये अमृत बिल्कुल तुच्छ है, परंतु वो उसको भगवान नहीं देख रहे थे, स्त्री देख रहे थे, तो लेकिन फिर भी कहा कि तुम किसी को काम दो, किसी को ज्यादा दो, किसी को मत दो, जो भी तुम करो, आप तुम्हारी बात को जैसा का तैसा स्वीकार करना हमारा परम धर्म है, तुम जैसा चाहो ऐसा करो। तो फिर मोहिनी ने कहा, चलो ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही विनय कर रहे हो तो मैं बांट रही हूँ, मगर मुझे अब एक बात है जो बहुत परेशान कर रही है। तो बोले, क्या? बोला, अब देखो, मैं अमृत तुम्हारे मुंह में डालूंगी ना, लेकिन तुम सबके मुंह से बहुत बदबू आ रही है और तुम्हारे शरीर से भी बहुत बहुत बदबू आ रही है, तो मैं इतनी बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, क्या तुम लोग नहाती नहीं हो, तुमने स्नान नहीं किया है? तो असुरों को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि इतने दिनों से समुद्र मंथन चल रहा था, और समुद्र उनको है ना, क्योंकि वो पहाड़ लेकर आए और तब से इतनी परिश्रम इतना तेज कर रहे थे, इतने पसीने, सब अपने अपने बगल में बदबू सूंघ रहे थे कि वाकई में हमारे अंदर कितनी बदबू है। तो मोहिनी ने कहा, चलो चलो, जब सब लोग जल्दी से स्नान करके और पवित्र साफ वस्त्र पहन के आओ, क्योंकि तुम लोग इतनी बदबू आ रही कि मैं खड़ा ही नहीं हो सक रही। तो फिर सारे असुर लोग गए, सब स्नान करके सुंदर धोती और खुशबू लगाकर आए, और फिर बोला कि अब शुरू करो, अब सब अच्छे तैयार होके आए थे ना। लेकिन मोहिनी ने कहा कि परंतु तुमने तो कहा था हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये अमृत निकाले, तो तुम्हारे भाई कहाँ है, दिख नहीं रहे, देवता कहाँ है, खाली तुम लोगों को ही पिलाऊं, इतना बड़ा अन्याय। तो फिर है ना, असुरों ने, एक असुर ने इशारे से दूसरे से कहा कि जाओ जाओ जल्दी से देवताओं को बुला के आओ वरना चली जाएगी। तो एक असुर गए और जाके देवताओं को कहा, आओ साथ में अमृत पियेंगे। देवता सुनकर परेशान हो गए कि ये असुर आज इंसान कैसे बन गए, हमको भी आना अमृत पिला रहे। तो बोला, चलो बातें बातें करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी अमृत पियेंगे साथ में। तो सब देवता और असुर सब साथ में बैठ गए, एक साथ बैठ गए। परंतु जब साथ में बैठ गए तो मोहिनी वहां पर पधारी, जैसे उसी रूम में आई, वो हॉल था एक बहुत बड़ा, उसमें आई, सुंदर सी आवाज आ रही थी उसके चरणों में, जो नूपुर लगे हुए थे उसमें, चम चम चम, उसकी सुंदरता, उसके चलने का जो वखान करते हैं शुकदेव गोस्वामी, उसके लिए शब्द नहीं है। लक्ष्मी जब समुद्र से निकली थी तब सबने यही सोचा था कि इससे अधिक सुंदर तो कोई भी नहीं हो सकती, परंतु लक्ष्मी स्वयं मोहिनी को देखकर मोहित हो रही थी। इससे पता चलता है कि भगवान जब पुरुष रूप में होते हैं तब भी कितने सुंदर लगते हैं, आज जब वो स्त्री बनकर आए तो कौन होगा जो उसके रूप पर मोहित नहीं हो रहा होगा। तो अत्यंत ही सुंदर लग रही थी उसको देखकर करोड़ों लक्ष्मियां और करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित होकर गिर रहे थे। तो नर हो या नारी, भगवान से सुंदर कोई नहीं होता है, कोई हो ही नहीं सकता। फिर सब जब देवता और असुर एक साथ बैठे हुए थे तो मोहिनी ने एक असुर को बुला के बोला कि देखो, सब एक साथ बैठेंगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा देवता कौन है, असुर कौन है, क्योंकि तुम लोग मुझे लेकर आए हो, तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा अमृत तुम लोग को मिले। तो अब ऐसा करो, तुम दोनों ऐसे बीच में स्पेस बना कि एक साइड पर देवता और एक साइड पर दानव इस तरह अलग अलग बैठे। तो फिर मोहिनी ने कहा आप दोनों अलग अलग हो जाएं, इस साइड पर एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर पंक्तियां मारकर बैठ जाइए। तो इस तरह से सब दोनों अलग अलग होकर बैठ गए और दो भाग बन गए। और फिर मोहिनी ने वापस से एक असुर को बुलाया, जो मुख्य असुर था ना, उसको बोला कि देखो मेरे पास एक और युक्ति आई है कि ये जो अमृत है ना, ये ऊपर जो है ना बहुत पतला पतला है, ये ऊपर का पतला पतला मैं क्या करती हूँ, वो देवताओं को पिला देती हूँ। अब उन्होंने भी इतनी है ना परिश्रम किया है, तो ये पतला पतला सारा उनको पिला देती हूँ, फिर जो नीचे का गाढ़ा अमृत बचेगा ना, वो गाढ़ा गाढ़ा अमृत, उसमें बहुत पावर है, वो सारा तुमको पिलाऊंगा, वो सारा तुमको पिलाऊंगी। तो फिर है ना, पहले उनको पिला दो, तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो फिर वो चले जाएंगे ना, फिर हम मजे से पियेंगे, शराब और शबाब का आनंद साथ में लेना। तो असुर ने कहा हाँ, इन सबको जल्दी से पिला कर भगा दो, हमको भी ये नहीं अच्छे लगते। तो जो मोहिनी है वो देवताओं के साइड पर अमृत का कलश लेकर गई और सारे देवताओं को पात्र भर भर के अमृत पिला रही थी, सब बहुत बहुत अमृत उनको पिला रही थी। तो साथ साथ में क्या कर रही थी जानते हो, हमारे श्लोक की जो सेकेंड लाइन हमने पढ़ी क्या, अपायत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। अपायत्सुरान यानी पीने के लिए दिया अमृत देवताओं को और अन्यों को मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया, सुंदर अपनी सुंदरता से मोहित कर रही थी, यानी कि ऐसे आंखों से इशारे कर रही थी कि बस अभी थोड़ा थोड़ा उनको पिला के मैं आ रही हूँ तुम लोगों के पास, बस ये निकल जाए ना थोड़ा थोड़ा पी के, फिर मैं हम आपस में मजा करते हैं, इनको खाली पिला के निकाल दो। तो सारे असुर बोले थे हाँ जल्दी जल्दी करो, उनको जल्दी से भगाओ, उसको देख रहे थे मुंह खोल खोल के। तो उसमें से कुछ असुरों को ऐसा लगा कि मोहिनी ने बोला थोड़ा थोड़ा पिला कर आ रही हूँ, ये तो सारा का सारा पिला रही है, इसे लग रहा है कि ये सारा खत्म ही कर देगी। तो दूसरे असुरों ने बोला कि देखो हमने इसको पहले ही बोल दिया था, बोला था ना जैसे तुम्हें बांटना है वैसे बांटो, हम बीच में कभी भी नहीं बोलेंगे, तो फिर हम अभी कैसे बोल सकते हैं, हमने तो पहले इसको बोला, अगर अभी बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएगी। तो फिर उसमें से जब उन सारे राक्षसों ने सुना, उसमें से एक राक्षस वो राहु जो है ना, उसने सुना कि इस तरह से तो सारा अमृत खत्म हो जाएगा और हमारा सारा परिश्रम विफल हो जाएगा, तो उसने क्या किया, वो देवताओं का स्वरूप धारण करके उधर आके बैठ गया उस देवताओं के साथ। और मोहिनी जो है उसने वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर बैठ गया। तो फिर अब चंद्रमा और सूर्य को पता चल गया कि ये असुर है, लेकिन मोहिनी जब तक वो बोल नहीं पाए, क्योंकि भय था ना इतना उसके उस समय, तो फिर बोल नहीं पाए। और मोहिनी ने जैसे उसके मुंह में अमृत डाला, अभी तक गले तक ही था उसका अमृत, नीचे नहीं गया, और तभी है ना चंद्रमा और सूर्य ने इशारे से बताया कि मोहिनी ये राक्षस है, इसने अमृत पी लिया। तो मोहिनी उसी समय भगवान के रूप में भगवान विष्णु का स्वरूप धारण किया और फिर सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी। लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था उसकी गर्दन में, यानी कि इस गले तक तो अमृत आ गया था, तो उसका नीचे वाला जो हिस्सा था ना वो मर गया, परंतु उसका ऊपर का हिस्सा जीता रहा, मतलब वो नहीं मर सका। तो इससे ये प्रश्न उठता है, क्या भगवान को पता नहीं था, क्या भगवान से भूल हो सकती है इतनी बड़ी कि वो असुर को ना पहुंच पहचाने। लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, भगवान से भूल नहीं हुई, भगवान अमृत की विशेषता बताना चाह रहे थे कि अमृत यदि कोई पी लेता है फिर वो कट भी जाए फिर भी मरता नहीं, इसे अमृत की विशेषता बता रहे थे। और फिर ये राहु सदैव ग्रहण बनकर चंद्रमा और सूरज के जीवन में आता रहता है, कभी सूर्य ग्रहण होता है कभी चंद्र ग्रहण होता है, तो ये भगवान की योजना से हुआ। तो यहाँ तक मोहिनी का अवतार हमने पढ़ा। तो अत्यंत ही सुंदर समुद्र मंथन के विषय में हमने संक्षिप्त में पढ़ा। अभी जब हम आठवां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही विस्तार से कथा आएगी, परंतु इस कथा में कुछ समझने के लिए है। ये केवल स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत बहुत बड़ा दृष्टांत है। इससे हमें क्या समझ में आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एवं सुरा सुर गुणा समदेशे काले हतोर्थ कर्मम मथ। एवं सुरा सुर गुणा, यानी कि जितने भी सुर थे और जितने भी असुर थे, उन्होंने समदेशे काले, समान काल, समान देश, समान कारण और समान प्रयोजन के लिए कर्म किया। समान रूप से बुद्धि लगाई, जितनी शक्ति असुर ने लगाई उतनी शक्ति देवताओं ने लगाई, जितनी बुद्धि असुरों ने लगाई उतनी बुद्धि देवताओं ने लगाई, जितना कर्म का परिश्रम देवताओं ने किया उतना ही असुरों ने किया। फिर भी अपि फले विकल्पा, फल अभिन्न था, फल विकल्प था, फल उसका परिणाम, दोनों को जब फल मिलने का समय आया तो दोनों को फल अलग अलग मिला, विपरीत फल मिला। वास्तविक फल समुद्र मंथन का अमृत, और वो अमृत केवल मात्र देवताओं को पिलाया गया। टोटली अनजस्टिस है ना, यानी कि इतना सब परिश्रम जब दोनों ने मिलकर किया है तो फिर दोनों को बराबर का नहीं तो फिर भी उनको थोड़ा तो मिलना चाहिए था। तो फिर ये भगवान ने इतना अनजस्टिस क्यों किया, उसका कारण क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं आठवें स्कंद के आठवें अध्याय के श्लोक नंबर 45-46 इन श्लोक में बताते, बहुत ही सुंदर बताते हैं कि ये जो परिणाम भिन्न है, फल जो अलग अलग दोनों को मिला, उसका कारण क्या है? यत पाद पंकज रज शरण यान्न देव्या, क्योंकि देवताओं ने यत पाद पंकज रज भगवान के चरण कमलों के का आश्रय लिया। जब व्यक्ति परिश्रम करता है ना, तो परिश्रम से, कोरी मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला जब तक कि भगवान का साथ ना हो। हार्ड वर्किंग, परिश्रम तो गधा भी करता है। इस संसार में देखो समस्त जीव परिश्रम करते हैं, परंतु जब तक भगवान आपका साथ नहीं देता है तो परिश्रम से आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, वही इस लीला से भगवान दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए, हम इस बात को बहुत बहुत जगहों से देखते हैं। अर्जुन यानी कि पांच पांडव और सौ कौरव सब एक ही फैमिली में पैदा हुए, एक ही गुरु से शिक्षा ली, एक बल्कि कौरवों के पास सौ थे और पांडवों के पास पांच थे। जब युद्ध हुआ, जब शिक्षा भी एक ही गुरु से ली, जब युद्ध हुआ तो पांडव जीत गए और कौरव हार गए। सिर्फ उसकी वजह ये, क्या पांडव कौरवों ने युद्ध करने में कोई परिश्रम नहीं किया था? क्या उन्होंने, उन्हें युद्ध कला नहीं आती थी? सब कुछ था उनके पास जो पांडवों के पास था, केवल कृष्ण नहीं था। तो जहाँ कृष्ण नहीं है वहां पर विजय नहीं है, वहां पर कभी भी परिश्रम करने का रिजल्ट जो है वो आपको सही नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति यत पाद पंकज रज शरणायान्न देव्या, क्योंकि देवताओं ने भगवान के चरण कमलों का शरण ग्रहण किया था, तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा निश्चित रूप से जीत उसी को मिलेगी। फल कर्म का जो फल, यानी कि कर्म का फल हमें भगवान को अर्पण करना, फिर भगवान जो देते हैं वो हमारे लिए होता है। जीव असुरों की क्या प्रवृत्ति है कि वो स्वयं भोगना चाहते हैं, भोग्य बनना चाहते हैं, परंतु देवताओं की क्या प्रवृत्ति है कि वो भगवान को आश्रय बनाते हैं, भगवान की चरणों की शरण ग्रहण करते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो आपकी कृपा है। तो जब जीव सब कुछ अपने समस्त वैभव का श्रेय भगवान को देते हैं तो भगवान उसे लौटा देते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा निश्चित रूप से जय जीत और कर्मों का फल उसी को सुनिश्चित रूप से मिलेगा, और जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा निश्चित रूप से उसको हार मिलेगी। तो समस्त जन्मों की मेहनत का फल यदि हम चाहते हैं तो हम परिश्रम से, कोरी मेहनत से नहीं मिल सकेगा हमें वो फल। हमें क्या करना होगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, और जब भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं तो ही हमें अपनी मेहनत का, हमें अपने कार्य का, क्योंकि ये मेहनत हम जिस शरीर से कर रहे हैं वो शरीर भगवान का है, जो बुद्धि यूज कर रहे हैं वो बुद्धि कृष्ण की है, जो जो भी उस कार्य करने में सामग्री यूज कर रहे हैं वो सब सामग्री कृष्ण की है। तो जब तक कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, तब तक हमें हमारे परिश्रम का फल प्राप्त नहीं होगा। और इस कलयुग में भगवान की शरण ग्रहण करने का अति सुगम उपाय है भगवान के पवित्र नाम का जप करना और भगवान की कथाओं का श्रवण करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।